एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आज हम एक काफी दिलचस्प जर्मन दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसे विचारक जिन्होंने 19वीं सदी के आशावाद को आप कह सकते हैं सीधी चुनौती दी।
बिल्कुल, नाम है आर्थर शोपेनहावर, 1788 से 1860 तक।
हाँ, और शोपेनहावर इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने सिर्फ पश्चिमी दर्शन पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि शायद पहली बार पूर्वी विचारों को,
हाँ, उपनिषद और बौद्ध धर्म को,
बिल्कुल, उनको पश्चिमी सोच के साथ बहुत गहनाई से जोड़ा। ये उस समय के लिए तो काफी नई बात रही होगी।
बहुत नहीं, उनका असली महत्व इसी में है कि उन्होंने उस दौर के जो बड़े विचार थे, जैसे जर्मन आदर्शवाद और वो जो एनलाइटनमेंट वाली सोच थी,
प्रबोधन काल वाली,
कि तर्क से दुनिया बेहतर होगी।
हाँ, कि भाई तर्क है, मानवीय समझ है, तो दुनिया लगातार बेहतर होती जाएगी। शोपेनहावर ने इस पर गहरा संदेह जताया। तो मतलब उस जमाने के जो बड़े दार्शनिक थे, कांट, फिश्टे, हेगेल, वो सब मान रहे थे कि इतिहास का एक तर्क है, एक दिशा है, प्रगति हो रही है।
हाँ हाँ बिल्कुल, हेगेल जैसे विचारक तो मानते थे कि इतिहास एक महान तर्कसंगत योजना का हिस्सा है जो धीरे धीरे खुल रही है।
और शोपेनहावर आए और कहा, रुको जरा, शायद ऐसा नहीं है।
उन्होंने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये जो दुनिया हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिसे हम असलियत मान लेते हैं,
हाँ,
वो असल में महज एक प्रतिनिधित्व है, फोरस्टेलुंग, मतलब एक तरह का दिखावा, सपना समझ लीजिए।
दिखावा, सपना, मतलब ये सब असली नहीं है। तो फिर असली क्या है भाई?
असली है, शोपेनहावर के अनुसार, इस दिखावे के पीछे, इस पर्दे के पीछे छिपी एक ताकत, एक अंधी, अतार्किक, कभी न शांत होने वाली इच्छा शक्ति, विल, विले।
इच्छा शक्ति? ये मेरी आपकी इच्छा जैसी है?
नहीं, ये व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक ऊर्जा है, अचेतन, जो हर चीज में है, पत्थर में भी, पौधे में भी, और हमारी अनगिनत इच्छाओं में भी।
अच्छा,
और क्योंकि ये अंधी है, अतार्किक है, इसका कोई अंत नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिवाय चलते रहने के, तो यही दुनिया में सारे संघर्ष और सारी पीड़ा का मूल स्रोत है।
ये तो दुनिया को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है, निराशावादी भी।
हाँ, निराशावादी तो कहा ही जाता है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर शोपेनहावर के जीवन को, उनके विचारों को, खासकर ये इच्छा शक्ति और प्रतिनिधित्व की दुनिया को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, उनकी मुख्य रचनाओं पर भी बात होगी और ये भी देखेंगे कि आज भी उनके विचार क्यों मायने रखते हैं। चलिए शुरुआत उनके समय और माहौल से करते हैं। कैसा था वो दौर?
जैसा हमने कहा, जर्मन आदर्शवाद का बोलबाला था, कांट, हेगल सब थे, लेकिन साथ ही यूरोप में उथल पुथल भी बहुत थी। नेपोलियन वाले युद्ध अभी खत्म हुए थे,
वियना कांग्रेस,
हाँ, और औद्योगिकरण भी शुरू हो रहा था, माहौल बदल रहा था, और बौद्धिक स्तर पर रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद का भी असर था,
जो तर्क के बजाय भावना पर जोर देता था।
बिल्कुल, भावना, व्यक्तिवाद, प्रकृति की महानता। तो इन सब के बीच शोपेनहावर अपनी अलग राह बना रहे थे, जो इन सबसे थोड़ी हटकर थी।
किनका असर रहा उन पर सबसे ज्यादा? कांट का नाम तो आया ही।
हाँ, कांट का असर सबसे गहरा था, इसमें कोई शक नहीं, खासकर उनका वो जो भेद था फिनोमिना और नोमिना का।
फिनोमिना यानी दुनिया जैसी हमें दिखती है,
और नोमिना यानी दुनिया जैसी वो असल में है, जिसे हम सीधे सीधे जान नहीं सकते। तो शोपेनहावर ने ये ढांचा तो ले लिया, पर उसमें भर दिया कुछ बिल्कुल अलग। कांट ने तो नोमिना को अज्ञेय छोड़ दिया था,
हाँ,
शोपेनहावर ने कहा नहीं, ये नोमिना ही वो अंधी इच्छा शक्ति है। ये काफी विवादास्पद बात थी।
और पूर्वी दर्शन, ये कैसे आया उनके जीवन में?
ये बहुत ही दिलचस्प बात है। प्लेटो का असर तो था, जो कई दार्शनिकों पर होता है, लेकिन प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर उपनिषद और बौद्ध धर्म,
हाँ,
उनको उन्होंने लैटिन अनुवादों के जरिए पढ़ा, और ये उनके लिए एक रेवलेशन जैसा था, एक नई दृष्टि मिली। उन्हें लगा कि उनके जो विचार बन रहे थे इच्छा शक्ति और दुख के बारे में, उनकी पुष्टि इन पूर्वी दर्शनों में हो रही है।
ये तो वाकई अनोखी बात है उस समय के लिए।
बिल्कुल।
अच्छा, अब जरा उनके निजी जीवन पर आते हैं। कहते हैं उनका बचपन, उनका माहौल भी उनके विचारों पर असर डालता है।
हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। जन्म तो डांसिंग में हुआ, जो अब पोलैंड में डांस के। अमीर व्यापारी परिवार था, हैम्बर्ग में पले बढ़े, अच्छी परवरिश हुई, यूरोप भी घूमे। पहले तो बिजनेस संभालने की तैयारी थी।
फिर क्या बदला?
जब वो 17 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई और शक था कि ये आत्महत्या थी। ये एक बड़ा झटका था, एक बड़ा मोड़।
इसी के बाद उन्होंने अकेडमिक राह चुनी।
हाँ, पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने तय किया कि वो बिजनेस नहीं, पढ़ाई करेंगे, दर्शन पढ़ेंगे।
और उनकी माँ जोहाना शोपेनहावर, वो तो खुद काफी मशहूर थीं।
हाँ, वो सफल उपन्यासकार थीं, वीमर में उनका बड़ा नाम था, साहित्यिक गोष्ठियां करती थीं, गेटे जैसे लोग आते थे उनके यहाँ।
तो माँ ने सपोर्ट किया बेटे के फैसले को?
नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें ये अकेडमिक रास्ता पसंद नहीं आया। माँ बेटे के विचार भी बिल्कुल अलग थे, व्यक्तित्व भी टकराते थे। नतीजा ये हुआ कि रिश्ते बहुत बिगड़ गए।
इतने कि वो अलग हो गए?
हाँ, अलग हो गए और शायद फिर कभी मिले भी नहीं। ये अकेलापन, रिश्तों की ये कड़वाहट, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया और शायद उनके विचारों में भी ये कहीं ना कहीं झलकता है।
और एकेडमिक दुनिया में भी उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली शुरुआत में, वो हेगल वाला किस्सा।
हाँ, वो तो बड़ा मशहूर है। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने लेक्चरर बनने की कोशिश की। अब हेगल उस समय के सुपरस्टार थे।
हाँ, उनकी क्लास में भीड़ लगती होगी।
बिल्कुल, तो शोपेनहावर ने क्या किया, जानबूझकर अपनी क्लास ठीक उसी समय रखी जब हेगल की क्लास होती थी।
अच्छा, फिर क्या हुआ?
नतीजा वही हुआ जो होना था। हेगल का कमरा खचाखच भरा और शोपेनहावर के कमरे में गिनती के छात्र।
ओह, ये तो बड़ा निराशाजनक रहा होगा।
बहुत, और इस अनुभव ने यूनिवर्सिटी सिस्टम और एकेडमिक दर्शन के प्रति उनकी कड़वाहट और पक्की कर दी।
शायद इसीलिए उनके विचार इतने गैर पारंपरिक लगते हैं, वो स्थापित ढांचे के खिलाफ थे।
हाँ, ये एक कारण हो सकता है। खैर, उन्होंने फिर एकेडमिक करियर का इरादा छोड़ दिया और 1833 से फ्रैंकफर्ट में बस गए। पिता की छोड़ी विरासत थी तो आर्थिक चिंता नहीं थी।
तो एक निजी विद्वान की तरह जीवन जिया?
बिल्कुल, एकाकी जीवन, बहुत अनुशासित रूटीन था। रोज सुबह लिखना, पढ़ना, दोपहर में बांसुरी बजाना और शाम को अपने पूडल कुत्ते के साथ टहलना।
हाँ, उनके कुत्तों के बारे में भी सुना है, वो हमेशा पूडल ही रखते थे।
हाँ, हमेशा एक पूडल। और मजे की बात यह है कि वो उन सबका नाम आत्मा रखते थे, संस्कृत वाला आत्मा या फिर बुत्स।
आत्मा क्यों?
कहते हैं वो मानते थे कि अपने कुत्ते की आंखों में भी उन्हें वही पीड़ित इच्छा शक्ति दिखती है जो पूरी कायनात को चला रही है, वो सार्वभौमिक पीड़ा।
ये तो उनके दर्शन का ही एक रूपक जैसा है।
बिल्कुल, तो जीवन एकाकी था, पर इसी दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा।
उनकी सबसे बड़ी किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, वो तो काफी पहले आ गई थी ना, 1818 में।
हाँ, जब वो सिर्फ 30 साल के थे, उनका मैग्नम ओपस। लेकिन दशकों तक किसी ने उसे घास नहीं डाली, गुमनाम सी रही।
फिर शोहरत कब मिली?
शोहरत मिली जीवन के बिल्कुल आखिरी दशक में, खासकर 1851 में, जब उनकी एक और किताब आई, पेरेगगा एंड पेरालियोपोमेना।
ये कैसा नाम है?
हाँ, ग्रीक नाम है, मतलब है अतिरिक्त टिप्पणियां और छोड़ी हुई चीजें। इसमें निबंध थे, सुक्तियां थी और ये ज्यादा आम भाषा में लिखी गई थी।
अच्छा, तो ये लोगों को ज्यादा पसंद आई।
हाँ, इसी किताब से, खासकर इसमें एक हिस्सा था जीवन की बुद्धिमत्ता पर सूक्तियां, एफोरिजम्स ऑन द विजडम ऑफ लाइफ। उससे उन्हें वो पहचान मिली जो बरसों से नहीं मिली थी। कहते हैं जब पहला फैन लेटर मिला तो वो खुशी से उछल पड़े थे।
देर से ही सही, पर पहचान मिली। चलिए, अब उनकी इस महान कृति द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन और उनके मूल विचारों पर आते हैं। ये प्रतिनिधित्व और इच्छा शक्ति का चक्कर थोड़ा और समझाइए।
देखिए, शोपेनहावर शुरू करते हैं कांट की तरह। वो कहते हैं हम दुनिया को सीधे नहीं जानते।
अच्छा,
हम उसे अपने मन के जरिए, अपनी इंद्रियों के जरिए जानते हैं। हमारा मन उस पर कुछ संरचनाएं थोपता है, जैसे समय, स्थान, कारण कार्य का सिद्धांत।
मतलब हम दुनिया पर एक चश्मा लगाकर देखते
हैं। बिल्कुल, यही चश्मा दुनिया को हमारे लिए एक प्रतिनिधित्व या फोरस्टेलुंग बना देता है। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में चीजें असली लगती हैं पर होती नहीं है।
ठीक है, तो ये दुनिया एक तरह का सपना है और इस सपने के पीछे की हकीकत वो है इच्छा शक्ति।
हाँ, वही अंधी, अतार्किक, लगातार संघर्ष करती ऊर्जा, ये इच्छा शक्ति ही चीजों का असली सार है, वो थिंग इन इटसेल्फ, जिसे कांट ने अज्ञेय कहा था।
पर ये इच्छा शक्ति चाहती क्या है, इसका मकसद क्या है?
यही तो बात है, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ये बस है। ये बस खुद को अभिव्यक्त करना चाहती है, हर चीज में, पत्थर के खिंचाव में, पौधे के बढ़ने में, जानवर की भूख में, हमारी अपनी हजार इच्छाओं में।
और क्योंकि इसका कोई अंत नहीं, कोई संतुष्टि नहीं,
इसीलिए ये लगातार संघर्ष पैदा करती है, टकराव पैदा करती है और अंततः दुख पैदा करती है। यही उनके दर्शन का मूल है, इच्छा ही दुख का कारण है।
इसीलिए वो इतने निराशावादी कहलाए कि जीवन का मूल स्वभाव ही दुख है।
बिल्कुल, उनका वो मशहूर कथन है ना, जीवन दर्द और ऊब के बीच पेंडुलम की तरह झूलता है।
हाँ सुना है। मतलब
जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम उसे पाने की इच्छा करते हैं, ये दर्द है, कमी का एहसास। जब वो मिल जाता है तो थोड़ी देर की संतुष्टि होती है,
और फिर
सिर उठाती है और ये पेंडुलम फिर दर्द की तरफ झूल जाता है।
और खुशी, खुशी क्या है फिर?
शोपेनहावर के लिए खुशी कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, वो बस दुख की या इच्छा की या ऊब की अस्थाई गैर मौजूदगी है, एक नेगेटिव स्टेट।
बाप रे, ये तो वाकई बहुत डार्क व्यू है जिंदगी का। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी बताया उन्होंने, या बस दुख भोगते रहो?
नहीं, रास्ता बताया, दो रास्ते बताए, एक अस्थाई है, दूसरा स्थाई।
अच्छा, पहला क्या है?
पहला अस्थाई रास्ता है सौंदर्य चिंतन, एस्थेटिक कॉन्टेम्पलेशन। जब हम किसी महान कलाकृति को देखते हैं या संगीत सुनते हैं या प्रकृति की सुंदरता में खो जाते हैं,
हाँ,
तो कुछ पलों के लिए हम अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को, अपनी मैं को भूल जाते हैं। हम दुनिया को बस देखते हैं बिना किसी स्वार्थ के, इच्छा से मुक्त होकर,
एक तरह से ट्रांसेंड कर जाते हैं।
बिल्कुल, उन क्षणों में हम इच्छा शक्ति के चुंगुप से थोड़ी देर के लिए आजाद हो जाते हैं। हम दुनिया को प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं, बल्कि उसके शुद्ध रूप, उसके आइडियाज, प्लेटोनिक आइडियाज के तौर पर देखते हैं।
और इसमें संगीत का खास महत्व क्यों? वो खुद बांसुरी बजाते थे।
हाँ, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि बाकी कलाएं जैसे पेंटिंग या मूर्तिकला, वो तो दुनिया के आइडियाज की नकल करती हैं।
ठीक है,
पर संगीत किसी आइडिया की नकल नहीं करता, वो सीधे सीधे इच्छा शक्ति की ही नकल है, उसकी आवाज है।
ओह, मतलब संगीत सुनते हुए हम सीधे जीवन के संघर्ष, इच्छा, दुख, खुशी को महसूस करते हैं।
एग्जैक्टली, इसीलिए संगीत उनके लिए सर्वोच्च कला थी, वो इच्छा शक्ति का सबसे शुद्ध प्रतिबिंब था।
ये दिलचस्प है। और दूसरा स्थाई रास्ता क्या बताया?
दूसरा रास्ता ज्यादा कठिन है, ज्यादा स्थाई, वो है तपस्वी इनकार, एसेटिक डिनायल,
तपस्या।
हाँ, ये विचार भारतीय दर्शन, खासकर बौद्ध और हिंदू दर्शन से बहुत प्रभावित है। इसमें व्यक्ति ये समझ जाता है कि सारी इच्छाएं, सारी चाहते ही दुख का मूल हैं। तो वो जानबूझकर अपनी इच्छाओं को दबाता है, उन्हें नकारता है, जीवन की दौड़ से खुद को अलग कर लेता है, इच्छा शक्ति के शासन को पूरी तरह से तोड़ देता है।
ये तो बहुत कठिन मार्ग है।
बहुत कठिन। शोपेनहावर भी मानते थे कि ये रास्ता सबके लिए नहीं है, ये कुछ विरले लोग ही अपना पाते हैं, संत या फकीर किस्म के लोग।
इसी दुख की समझ से शायद उनकी नैतिकता का विचार भी जुड़ा है, वो करुणा वाली बात।
हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। शोपेनहावर के लिए सच्ची नैतिकता किसी बाहरी नियम या तर्क पर आधारित नहीं हो सकती, कांट की तरह नहीं।
तो किस पर आधारित है?
वो आधारित है करुणा पर, कंपैशन, मिटलाइड।
करुणा कैसे?
जब हम गहराई से ये महसूस करते हैं कि दुनिया के सारे प्राणी, चाहे इंसान हो या जानवर, वो सब उसी अंधी पीड़ित इच्छा शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, जैसे हम खुद हैं, तो हम उनके दुख में अपना दुख देखने लगते हैं। वो जो मैं और तुम का पर्दा है, वो हट जाता है, एक सार्वभौमिक सहानुभूति पैदा होती है, और यही सहानुभूति, यही करुणा नैतिकता का असली आधार है, क्योंकि ये हमें स्वार्थ से ऊपर उठाती है।
ये विचार तो बहुत गहरा है, स्वार्थ के परे जाकर दूसरों के दुख को महसूस करना।
हाँ, और ये कोई बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक गहरी सहज अनुभूति है।
उनके और कौन से मुख्य काम थे जिन्हें जानना जरूरी है?
एक तो उनकी डॉक्टरेट थीसिस थी ऑन द फोरफोल्ड रूट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, ये ज्ञान कैसे बनता है, इसके बारे में थी। उनके बाद के काम की नींव थी ये।
ठीक है।
फिर एक और अहम किताब है, द टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स। इसमें दो निबंध हैं, एक इच्छा की स्वतंत्रता पर और दूसरा नैतिकता की नींव पर।
इच्छा की स्वतंत्रता पर क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने तर्क दिया कि इच्छा स्वतंत्र नहीं है, हम चुन नहीं सकते कि हम क्या चाहें, हमारी इच्छाएं हमारे अंदरूनी स्वभाव, हमारी इच्छा शक्ति से तय होती हैं। हाँ, हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं, पर इच्छा को चुन नहीं सकते।
वही वाला कोट, मनुष्य वो कर सकता है जो वो चाहता है, पर वो ये नहीं चाह सकता कि वो क्या चाहता है।
बिल्कुल, यही उनका नियतिवादी नजरिया था, और इसी किताब में उन्होंने करुणा को नैतिकता का आधार बताया।
उनकी मनोवैज्ञानिक पकड़ भी जबरदस्त लगती है, अचेतन इच्छाओं पर इतना जोर देना, ये तो फ्रॉयड से पहले की बात है।
हाँ बिल्कुल, अचेतन प्रेरणाओं, दबी हुई इच्छाओं, कामेच्छा की ताकत, इन सब पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। फ्रॉयड ने खुद माना है कि शोपेनहावर ने उनके विचारों को, खासकर इड की अवधारणा को पहले ही भांप लिया था।
तो फ्रॉयड पर उनका सीधा असर था।
हाँ, फ्रॉयड और यंग दोनों पर उनके मनोवैज्ञानिक विचारों का असर पड़ा, और हेगल का तो वो जिक्री मजाक उड़ाते हुए करते थे।
हाँ, वो तो उनके कट्टर विरोधी थे।
सबसे बड़े दार्शनिक प्रतिद्वंदी हेगल का वो आशावाद, वो तर्क का राज, ऐतिहासिक प्रगति, शोपेनहावर को ये सब खोखला लगता था, बकवास। वो कहते थे दुनिया तर्क से नहीं, अंधी इच्छा से चलती है, और इतिहास वो बस एक ही कहानी को बार बार दोहराता है, कोई प्रगति नहीं होती।
तो हेगल की बिल्कुल उलट,
बिल्कुल 180 डिग्री उलट।
और बाद के किन विचारकों पर शोपेनहावर का साया दिखता है?
नीचे पर तो बहुत गहरा असर था शुरू में। नीचे ने शोपेनहावर को अपना शिक्षक कहा था, हालांकि बाद में वो उनसे अलग हो गए।
कैसे?
नीचे ने शोपेनहावर की इच्छा शक्ति को लिया, पर उसे सत्ता की इच्छा, विल टू पावर बना दिया, और जहां शोपेनहावर ने इच्छा को नकारात्मक माना, नीचे ने उसे जीवन की पुष्टि करने वाली एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखा।
अच्छा, और अस्तित्ववाद पर?
हाँ, किर्केगार्ड से लेकर सार्त्र, कामू तक, अस्तित्ववादी विचारकों में शोपेनहावर की छाप दिखती है। दुख, जीवन की अर्थहीनता, अकेलापन, चुनाव की जिम्मेदारी, ये सब थीम शोपेनहावर में मौजूद हैं।
वो एक तरह से अस्तित्ववाद के अग्रदूत थे,
और साहित्य और कला जगत में
वहां तो उनका असर बहुत व्यापक रहा। टॉल्स्टॉय, प्रूस्ट, थॉमस मान, सैमुअल बेकेट, बोर्जेस, कई बड़े लेखकों ने उनसे प्रेरणा ली।
संगीत में वाग्नर का नाम आपने लिया था।
हाँ, रिचर्ड वाग्नर तो उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनका ओपेरा है ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड, उसे अक्सर शोपेनहावर के दर्शन की, खासकर अतृप्त इच्छा और प्रेम की विनाशकारी शक्ति की संगीतमय व्याख्या माना जाता है।
ब्राह्म्स भी प्रभावित थे।
ये कितना अजीब है कि जीते जी दशकों तक गुमनाम रहे और बाद में इतने प्रभावशाली बन गए, खासकर 1848 की क्रांतियों के बाद ऐसा क्यों हुआ?
हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद हुआ ये कि 1848 में जब पूरे यूरोप में क्रांतियां हुई और फिर वो असफल हो गई।
हाँ, उम्मीदें टूटी।
बिल्कुल, वो जो प्रगति का, सुधार का आशावाद था, वो डगमगा गया। तब शायद लोगों को शोपेनहावर के निराशावादी यथार्थवाद में ज्यादा सच्चाई नजर आने लगी। लगा कि हाँ, दुनिया शायद उतनी तर्कसंगत और अच्छी नहीं है जितना हम सोच रहे थे।
तो उनका दर्शन एक तरह से उस मोहभंग के दौर के लिए ज्यादा प्रासंगिक हो गया,
कह सकते हैं, खासकर कलाकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों के लिए जो उस आशावाद से थक चुके थे।
लेकिन उनके विचारों की आलोचना भी तो हुई होगी, इतना निराशावाद, क्या ये अतिरंजित नहीं?
आलोचनाएं तो बहुत हैं। दार्शनिक स्तर पर देखें तो पहली बात, ये जो इच्छा शक्ति का कॉन्सेप्ट है, इसे साबित कैसे करें? ये एक मेटाफिजिकल दावा ज्यादा लगता है जिसे परखा नहीं जा सकता। दूसरी आलोचना यही है कि उनका निराशावाद जरूरत से ज्यादा है। क्या जीवन में सिर्फ दुख और ऊब ही है? खुशी, प्यार, संतुष्टि, अर्थ, इन सबका कोई स्थान नहीं? आलोचक कहते हैं कि ये शायद उनके अपने स्वभाव या कड़वे अनुभवों का नतीजा था।
एक और सवाल जो मन में आता है, अगर हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, वो भी उसी अंधी इच्छा शक्ति का गुलाम है, उसका एक औजार मात्र है,
हाँ,
तो फिर वो बुद्धि खुद इच्छा से मुक्त होकर सौंदर्य चिंतन या तपस्वी इनकार कैसे कर सकती? वो अपने मालिक के खिलाफ कैसे जा सकती है?
ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है, और शोपेनहावर इसका कोई बहुत संतोषजनक जवाब नहीं देते। ये उनके दर्शन की एक पहेली है, एक तनाव है कि बुद्धि कैसे इच्छा शक्ति से ऊपर उठ पाती है अगर वो उसी की पैदाइश है।
और उनके व्यक्तिगत विचार, उनमें भी तो कुछ विवादास्पद बातें थीं।
हाँ, थीं, और दुर्भाग्य से काफी गंभीर थीं। उनके लेखन में उस जमाने के कई पूर्वाग्रह साफ दिखते हैं।
जैसे?
सबसे ज्यादा आलोचना होती है उनके स्त्री द्वेष की, मिसोजिनी। उनका एक निबंध है ऑन विमेन, महिलाओं पर, जो 1851 में आया।
हाँ, उसका जिक्र आता है अक्सर।
उसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बेहद अपमानजनक और तकियानुसी बातें लिखी हैं। उन्हें बौद्धिक रूप से कमतर बताया, बचकाना, सतही, और कहा कि उनका अस्तित्व बस प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए है। ये पश्चिमी दर्शन के सबसे शर्मनाक हिस्सों में गिना जाता है।
ये जानना जरूरी है, उनके दर्शन को पढ़ते हुए इसे ध्यान में रखना होगा।
बिल्कुल, इसी तरह उनमें उस दौर के नस्लवादी विचार भी थे। हालांकि विडंबना यह है कि वही शोपेनहावर भारतीय दर्शन की इतनी गहराई से इज्जत करने वाले पहले यूरोपीय दार्शनिकों में से थे।
हाँ, ये विरोधाभास है, और उनका स्वभाव भी काफी रूखा बताया जाता है।
हाँ, काफी चिड़चिड़े और झगड़ालू किस्म के थे। अपनी माँ से लेकर हेगेल तक कई लोगों से उनके संबंध खराब रहे।
चलिए अब अंत में कुछ हल्की फुल्की बातें। वो सोने के सिक्के वाला क्या किस्सा था?
हाँ, ये उनके बुढ़ापे का किस्सा है जब वो फ्रैंकफर्ट में थोड़े मशहूर हो गए थे। वो रोज एक ही सराय में खाना खाने जाते थे।
अच्छा।
और उनकी आदत थी कि वो खाने से पहले मेज पर एक सोने का सिक्का रख देते थे।
क्यों?
शर्त ये थी कि अगर पास की मेज पर बैठे फौजी अफसर खाने के दौरान घोड़ों, कुत्तों या औरतों के अलावा किसी और, मतलब किसी गंभीर विषय पर बात करेंगे, तो यह सिक्का वो वहीं छोड़ देंगे गरीबों के दान पात्र के लिए।
और क्या हुआ?
कहते हैं उन्हें वो सिक्का कभी छोड़ना नहीं पड़ा, वो हमेशा उसे वापस अपनी जेब में रख लेते थे।
ये तो उनके मिजाज का भी पता देता है और शायद उनके पूर्वग्रहों का भी।
बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर देखें, आर्थर शोपेनहावर एक बहुत ही जटिल, उत्तेजक और अहम विचारक थे। अपने समय के आशावाद को उन्होंने जोरदार चुनौती दी।
हाँ, और मानवीय अस्तित्व, दुख का स्वभाव, इच्छा की ताकत, कला का मकसद, इन सब पर बुनियादी सवाल खड़े किए।
उनकी वो मूल अंतर्दृष्टि कि ये जो दुनिया दिखती है ये एक पर्दा है और इसके पीछे एक अंधी अतार्किक इच्छा शक्ति है जो लगातार संघर्ष और दुख पैदा कर रही है, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल। उन्होंने कांट, प्लेटो और पूर्वी दर्शन का एक बहुत ही अनूठा शक्तिशाली मिशन तैयार किया।
इन सब के बावजूद अचेतन मन पर उनके विचार, कला की भूमिका और खासकर करुणा का नैतिक महत्व,
ये सब आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। मनोविज्ञान में, कला में, नैतिकता की बहसों में, यहाँ तक कि आजकल की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसकी आलोचना में भी उनके विचार गूंजते हैं।
वो जीवन के दुख के शायद सबसे बड़े निदान करता थे, डायग्नोस्टिशियन।
हाँ, लेकिन उन्होंने सौंदर्य और इच्छाओं के इनकार में एक तरह से अर्थ और शांति पाने के रास्ते भी सुझाए।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। शोपेनहावर हमें अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में हर पल काम कर रही इस इच्छा शक्ति को पहचानने की चुनौती देते हैं। क्या इस पहचान से हमारे अपने संघर्षों, हमारी अपनी इच्छाओं और निराशाओं को देखने का नजरिया कुछ बदल सकता है? सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।